प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 3 से देखा कि हमारा उद्धार हो गया है, उद्धार हो रहा है और उद्धार होगा। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय हम जब आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनना चाहते हैं और एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं, प्रभु जी आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक जब आपके वचन को सुने तो आपका जीवित वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, उन्हें उद्धार देने पाए, आनंद देने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आज भी आप हमसे ताजगी के साथ में बोलें और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यूहन्ना कहता है कि जो धर्म का काम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। अभी तो हम नहीं जानते कि हम क्या होंगे, परंतु निश्चय ही जब वह प्रकट होगा तब हम उसकी समानता में होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अतः हमें इस संसार में पवित्र जीवन जीना है। हमारा उद्धार हो चुका है, परंतु हमारे उद्धार की प्रक्रिया अब भी चल रही है और चलती रहेगी। यह प्रक्रिया उस दिन तक चलेगी जिस दिन वह प्रकट होगा। तो आइए अब हम देखेंगे विश्वासी के दो स्वभाव। विश्वासी के दो स्वभाव, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। वह कहता है कि जो कोई पाप करता है, अर्थात पाप में जीता है, पाप करने का अभ्यस्त है। मैं भी कभी ऐसा ही जीवन जीता था और मेरा जीवन परमेश्वर से काफी दूर था। हमारी रुचि अलग अलग होती है, जैसा कि आज लोग इस संसार में करते हैं, स्त्री, शराब और मौज मस्ती, हम इसी को जीवन समझते हैं। मेरे प्रियो, हमारा चर्चा का विषय भी यही था। यूहन्ना का अभिप्राय यही है जब वह कहता है जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है। परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं। परमेश्वर कहता है तू व्यभिचार मत कर, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 14 पद में। वह आज भी इस आज्ञा के पालन की अपेक्षा करता है। नया दृष्टिकोण वास्तव में नया नहीं है, यह तो वही पुराने व्यवस्था है जो पहाड़ के समान अटल है, यह अन्य जाति का नहीं है। मेरे प्रियो, वह कहता है पाप तो व्यवस्था का विरोध है। परमेश्वर ने व्यवस्था का प्रतिपादन इसलिए किया था कि हमें अपनी पापी दशा का बोध हो और हम जाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यही व्यवस्था का उद्देश्य है। व्यवस्था मनुष्य के पाप मोचन के लिए नहीं थी, उसका उद्देश्य तो केवल मनुष्य के पाप को प्रकट करना है, या यूं कहें कि पाप को प्रकट करना था। पाप मुख्यतः परमेश्वर की इच्छा का विरोध है। दूसरे शब्दों में पापी वह है जो परमेश्वर की इच्छा के अधीन नहीं रहना चाहता है। संडे स्कूल की एक बालिका से पाप की परिभाषा पूछी गई तो उसने कहा, मेरे विचार में पाप का अर्थ है जो कुछ आप करना चाहें। वह सत्य से दूर नहीं थी। हमारा पुराना स्वभाव परमेश्वर की इच्छा का विरोधी है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस यही लिखता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मेरे प्रियो, हम कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, शरीर के अनुसार या आत्मा के अनुसार? पौलुस कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु अर्थात परमेश्वर से अलग होना। यूहन्ना यही कहता है, आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखकर शारीरिक विश्वासी नहीं हो सकते हैं, यह असंभव है। मुझे खेद है कि आज मनुष्य प्रायः कहता है, ओह मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। वह कैसा महान है, कुछ लोग कैसे धर्मी प्रकट होते हैं, परंतु मेरे मित्रों, वे परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, पौलुस स्पष्ट कहता है कि व्यवस्था के आने से पूर्व भी पाप था, परंतु वह अपराध नहीं था। यूहन्ना कहता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। इसका अर्थ है कि वह जो पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस ने लिखा है, जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं, परंतु पाप है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में वह कहता है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आदम ने पाप किया, उसका पाप हमारा पाप था। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 13 पद में लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। मनुष्य पापी था और परमेश्वर के अधीन नहीं था, तथापि वह व्यवस्था उल्लंघन नहीं था, क्योंकि व्यवस्था दी नहीं गई थी। तब वह आगे कहता है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 14 पद में, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया, उन्होंने पाप किया। क्यों? क्योंकि वे पापी थे। यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 6 पद में प्रत्येक उद्धार रहित मनुष्य का चित्रण है, हम भेड़ों की नाई भटक गए, सबने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने मसीह पर हम सब के पाप डाल दिए। ये 3 शब्द हमारी कहानी सुनाते हैं, अपना अपना मार्ग लिया। हमारी समस्या क्या है? हम अपना मार्ग चाहते हैं। पालने में लेटा एक शिशु रोता है, क्यों? वह अपना मार्ग चाहता है। हमें यह स्वभाव जन्म से मिला है, परमेश्वर विरोधी स्वभाव, परंतु परमेश्वर की संतान परमेश्वर के निकट आ गई है, उसका नया जन्म हो गया है। 1 यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु ही पाप उठाकर ले जाता है। वह इसी उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आया था। यहां हमारे ध्यान देने योग्य 2 बातें हैं। 1 यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है, उसने पाप का दंड भोगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, लिखा है, प्रभु यीशु जगत के पापों के लिए मर गया, परंतु यूहन्ना दर्शाता है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन से पाप का अभ्यास ही उठा ले जाता है। प्रभु यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारे ही नहीं संपूर्ण जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में यही कहा गया है। अंतर क्या है? हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए उसने मोक्षक मृत्यु को सहा। उसकी मृत्यु का एक उद्देश्य यह भी था कि वह हमें यहां इस पल पाप के सामर्थ से मुक्ति दिलाए। लिखा है उसके स्वभाव में पाप नहीं। जी हां, वह हमारी पाप बलि था। वह निष्पाप था, निष्कलंक था। वह व्यवस्था के अनुसार निष्कलंक एवं निर्दोष बलि था। यही कारण है कि वह हमारे पाप के दोष को मिटा पाया और हमें पाप करने के स्वभाव के विरुद्ध सामर्थ्य प्रदान कर पाया। उसने हमें नया स्वभाव दिया कि हम आज उसके लिए जीवन जिए। पहला योना की पत्री 3 अध्याय उसके 6 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। वह कहता है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, अर्थात आपका नया स्वभाव पाप नहीं करता है और कर भी नहीं सकता। डॉक्टर एच ए आयरनसाइट कहते हैं, मसीहा पूर्णतः निष्पाप जो अनुग्रह के अधीन हमारे लिए पाप बना कि हमारा परमेश्वर से मेल हो। वह विश्वासियों में पवित्र आत्मा के माध्यम से अंतर्वास करता है और हमारा नया स्वभाव वास्तव में हम में रोपित उसका जीवन है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो यह नया स्वभाव पुराने स्वभाव के साथ होकर पाप नहीं करेगा। मसीह में स्थित विश्वासी पाप नहीं करता है और पाप में जीवन नहीं जीता है। यही पहचान है। पापी तो पाप में ही जीवन जीता है, परंतु विश्वासी अपने नए स्वभाव के कारण पाप में जीवन नहीं जी सकता, जैसा कि उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में बहुत ही स्पष्ट है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 से 24 पद में, निसंदेह वह सुअरों में गया परंतु सुअरों के बाड़े में ही नहीं रह गया। इस बात को सदा आप स्मरण रखें। क्यों? क्योंकि वह पिता की संतान था और उसमें पिता के गुण थे। उसका पिता धर्मी था और पुत्र उसके अनुरूप जीवन जीना चाहता था। परमेश्वर पाप की प्रवृत्ति से मुक्त कराने का सामर्थ प्रदान करता है। यही यहां पर यूहन्ना कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। मेरे मित्रों, यदि आप पाप करके प्रसन्न होते हैं तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की संतान में अपने स्वर्गीय पिता का स्वभाव है। कुछ समय पूर्व मुझे एक युवक से पत्र प्राप्त हुआ, जिससे मेरा तात्पर्य आपको समझ में आएगा। मैं आपके समक्ष एक गंभीर समस्या रखता हूं। मैं सब कुछ करके देख चुका हूं और अब किसके पास जाऊं? कोई नहीं बचा है। यद्यपि मेरे मन में संदेह उत्पन्न होता है कि मैं नया जन्म प्राप्त विश्वासी हूं, मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, परंतु मैं समलैंगिक हूं। आप शायद सोचेंगे कि मैं अनंत जीवन के झूठे आश्वासन में जीवन जी रहा हूं, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा उद्धार हो गया है, परंतु मैंने अपने उद्धार का आनंद खो दिया है। मैं मसीही जीवन जीने का प्रयास तो करता हूं, परंतु मैं ऐसा बेचैन कभी नहीं था। मेरे मित्रों, यह पत्र प्रोत्साहन का कारण है। वह बेचैन है, उसे आनंद नहीं है, उसे शांति नहीं है। मैं उससे और उसके परिस्थिति में सबसे कहता हूं कि परमेश्वर आपको इससे मुक्ति दिला सकता है। आपको परमेश्वर से उसकी याचना करना है, उससे विनती करें कि वह आपको जीवन में शांति और आनंद का स्थान प्रदान करे। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप पाप से संतुष्ट नहीं होंगे। जो समलैंगिक जीवन को एक अलग जीवन शैली कहते हैं वे गलत हैं। परमेश्वर इसे पाप कहता है और कहता है कि इससे मुक्ति मिल सकती है। मेरे प्रियो, मैं मानता हूं कि इसमें कुछ असमानता है, परंतु एक विश्वासी मनोवैज्ञानिक से सहायता ले सकता है। परंतु सुनिश्चित करें कि वह विश्वासी डॉक्टर है, अन्यथा आप इस समस्या में अधिक गहरे गिर जाएंगे और आपका उद्धार कभी नहीं होगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि आप विश्वास करें तो उद्धार संभव है। पहला योना की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में हम आगे पढ़ते हैं, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यहां पर वह कहता है हे बालकों, योना संसार से नहीं परमेश्वर की संतान से यह बात कह रहा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यही बात परमेश्वर की संतान को प्रकट करती है। उसमें बने रहने का अर्थ भौतिक नहीं है, इसका एक पार्थिव व्यवहार भी है। यदि आप उसमें सहभागिता और सेवा के निमित्त बने रहते हैं तो पाप का त्याग करना होगा। मेरी एक व्यक्ति से भेंट हुई, उसने कहा, मैं आपके रेडियो कार्यक्रम को सुनता हूं, मेरे विचार में आप मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं एक शराबी हूं, मैंने वर्षों पूर्व प्रभु यीशु को ग्रहण किया था और मैं लंबे समय तक बिना पिए रह सकता हूं, परंतु फिर पी लेता हूं। मैं स्वयं से घृणा करने लगा हूं। वह एक ऊंचे पद का कर्मी था। वह रोने लगा। उसने कहा, यदि ऐसा ही रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं शराब पीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप यह न कहें कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। मैं 50 मील गाड़ी चलाकर आपके पास आया हूं कि आपसे यह प्रश्न पूछूं, क्या मेरी मुक्ति संभव है। मैंने उसकी ओर देखा और उससे कहा कि उसकी मुक्ति संभव है। यदि उसमें पिता परमेश्वर का स्वभाव है तो एक बात निश्चित है कि परमेश्वर उसे पाप में संतुष्ट नहीं रहने देगा। मैं बहुत समय बाद ऐसा परेशान मनुष्य को देख रहा था। मैंने उससे कहा, मेरे भाई, आप जब जब गिरें तब तब पिता परमेश्वर के पास आकर उससे कहें कि आपने क्या किया है। उससे कहें कि आप उसका अपमान फिर से करना नहीं चाहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपको मुक्ति दिला देगा। यह उन सब मनुष्यों की कहानी है जो प्रभु यीशु का अंगीकार तो करते हैं, परंतु किसी न किसी आदत या अभ्यास के दास हैं। परमेश्वर सामर्थी है और मुक्ति आपको दिला सकता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं युवक था तब परमेश्वर ने अद्भुत रूप से मेरे जीवन में हस्तक्षेप करके मेरा उद्धार किया। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। मेरे माता पिता भी मुझे अधिक परमेश्वर के बारे में नहीं बताए। मेरे पिता एक अच्छे हॉकी के खिलाड़ी थे और इस कारण जब भी वे खेलने के लिए बाहर जाते, अपने मित्रों के साथ, अपने टीम के साथ, जब वे विजयी होकर के लौटते तो वे जश्न मनाते थे। और आपको पता है कि जश्न कैसे मनाई जाती है। वे शराब पीते थे और कभी कभी मुझे और मेरे भाइयों को शराब लाने के लिए भेजते थे। हमें उस समय इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं ऐसा करता था। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि परमेश्वर की योजना अद्भुत है। उसने मेरे जीवन को बचाया। मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि वह आपको भी मुक्ति दिला सकता है। वह मेरे पिता को दिला सकता है, आपको दिला सकता है। वह आपको पाप से मुक्ति दिला सकता है। यह पत्री हमारे सबके जीवन से संबंधित है। परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हम अपने बुराइयों को छोड़ दें। मेरे प्रियो, हमारे इसी पल के जीवन से संबंधित बातें हम इस पत्री में पाते हैं। आप कोई छोटे से पाठ्यक्रम के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर को पुकारना ही होगा और उसके साथ सच्चा संबंध स्थापित करना होगा, क्योंकि जब तक आप उसके निकटता में नहीं आएंगे, वह आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आज आपके पास में एक सुंदर मौका है कि आप अपने उन बुरी आदतों को लेकर प्रभु यीशु के पास आ जाएं, अपनी कमजोरियों को उसे बता दें और निश्चय जाने कि वह आपको छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप अवश्य ही अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे और उन बुराइयों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तेरी पावन दया से बसा है जहां।